ओम शांति। एक बार सब बड़े प्यार से फिर से कहेंगे ताकि सभी एकदम अलर्ट हो जाएं। ओम शांति। आप सभी विशेष इस स्व परिवर्तन योग भट्टी में यहां पधारे हैं। विभिन्न स्थान मुंबई, महाराष्ट्र, आंध्रा, नेपाल तथा अन्य जो भी स्थानों से जहां से भी भाई बहन आए हुए हैं उन सबका दिल से स्नेह से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बाहरी मौसम है और बाबा के घर में भी बाबा के बच्चों की बहार है और ऐसे समय में ये योग तपस्या करना और वो भी मधुबन में। हमारा एक स्वीट वतन तो है ही, वो है निराकारी वतन, मूल वतन। उसके साथ साथ इस साकारी वतन का स्वीट होम है प्यारा मधुबन। ये हमारे पास बड़े अनमोल खजाने हैं, एक बाबा, एक मुरली और एक हमारा ये मीठा परिवार, जो सारी दुनिया में ढूंढकर भी कहीं नहीं मिलेगा। मधुबन भट्टी में आने का अवसर मिलना माना हमें तपस्या के बल का अधिकार प्राप्त करना और यही बल हमारी आत्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, हमारी स्वयं की उन्नति में हमें बहुत सहयोगी बनता है। तो आप सभी विशेष तपस्या करने के लिए यहाँ पर आए हैं इस वरदानी भूमि में, इस तपस्या भूमि में। जैसे किसी ने कहा है कि वक्त मिलता है जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। कहते हैं ये जीवन जो मिलता है, अभी हमें वक्त मिलता है, ये जिंदगी मिलती है हमको जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है स्वयं को बदलने के लिए। तो ये जो संगम युगी जीवन है हमारा, ये फिर दोबारा नहीं मिलेगा, ये कल्प के बाद ही मिलेगा। इसलिए हमें तपस्या के लिए बहुत, जो यहाँ पर जो भी आपको बताया जाएगा, बहुत अलर्ट होके, बुद्धि से, मन से अलर्ट होके, एकाग्र होके, एक चित होकर सुनेंगे। तो सर्वप्रथम हमारे बीच आज पधारे हैं हमारे अति स्नेही, अति सहयोगी, बहुत ही त्यागी तपस्वी, हमारे राजयोगी ब्रह्मा कुमार डॉक्टर सतीश भाई जी। हम आज आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत करते हैं। अगर मैं आपका जीवन परिचय दूं, तो जीवन परिचय में बहुत कुछ आपने अपने जीवन में हासिल किया है और मैं समझती हूं आप में से मैक्सिमम भाई बहन उनको जानते होंगे। आपने अपने क्षेत्र के अंदर बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, कई अवार्ड मिले हैं आपको सरकार से अपने मेडिकल फील्ड में, क्योंकि आप सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं और आप जानते हैं कि आप सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी एंड मेडिसिन जे वाटुमल ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और उसकी जो ब्रांच आबू रोड में है जिसको हम ट्रॉमा कहते हैं, वहां के आप विशेष इंचार्ज भी हैं और वहां के कार्डियोलॉजी में कंसल्टेंट भी हैं। और इसके अलावा जो आपका क्षेत्र है, जो जो आपने रिसर्चेस की लेटर ऑन कार्डियोलॉजी में, जिसको हम कैड प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, उसके कारण आपको मिनिस्टर्स के द्वारा, सरकार के द्वारा अपने मेडिकल फील्ड में बहुत सी उपलब्धियां मिली, बहुत से अवार्ड्स के द्वारा आपको सम्मानित किया गया। लेकिन मैं समझती हूँ सबसे बड़ी उपलब्धि जो शिव बाबा ने, जो प्यारे बाप दादा ने आपको दी, वो बाबा कहते रहे कि ये दिल वाले हैं। देखिए, दिल तो सभी में होता है, बिना दिल के तो इंसान नहीं होता है। लेकिन जब किसी को कहा जाता है ये दिल वाला है, इसका मतलब होता है उसका दिल बड़ा विशाल होता है, उसका हृदय जो है वो बहुत विशाल होता है, उसके विचारों में विशालता होती है, उसकी दृष्टि में विशालता होती है। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहकर विशेष हमारे आदरणीय भ्राता जी को निवेदन करती हूँ कि जो आज का विषय है बाप समान बनने की धारणाएं, क्योंकि हमने व्यक्तिगत आपको देखा है कि जैसे आपका अपने क्षेत्र में एक एक्सपर्टीज है, इसी प्रकार आपको बाबा की मुरली से बहुत प्यार है, आपको योग से बहुत प्यार है, आप अपने दिनचर्या में अमृत वेला बाबा की मुरली कभी मिस नहीं करते हैं, और ये भी हमारे लिए प्रेरणा की बात है। तो ऐसे भ्राता आज हमारे बीच में मौजूद हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप अपने अनुभव युक्त बातें, बाप समान बनने की धारणाएं, इस विषय को आप स्पष्ट करेंगे। आदरणीय ब्रह्मा कुमार डॉक्टर सतीश भाई जी।
ओम शांति। आप सभी बाबा के बेहद मधुबन घर में पधारे हैं स्व परिवर्तन के लिए। आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि योग, याद और तपस्या, ये तीन शब्द तो हैं, कि तो योग और योग भट्टी में क्या फर्क है, याद और याद भट्टी में क्या फर्क है, तपस्या और तपस्या भट्टी में क्या फर्क है। कभी कभी मन में प्रश्न उठता है, नहीं उठता है? देखिए, हम इंडिविजुअली योग करते हैं, सेंटर्स पे हम या बाबा कमरे में थोड़ी देर के लिए योग करते हैं, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। सेंटर्स पे भट्टियां होती हैं जिसमें 100, 200, 300, 400, 500 भाई बहने योग करते हैं। 2-3 दिन की भट्टियां भी होती हैं, 1 दिन की भट्टी भी होती है। कि तो ये जो स्थान है जहां पे आप 4,000 भाई बहने, जिसे हम तपस्या कुंड भी कहते हैं, जो बाबा की पधरामणी का स्थान है, इस डायमंड हॉल में 96 से लेकर के 2017 तक बाबा कितनी बार पधरामणी हुई। अगर हम इंडिविजुअली योग करते हैं, उसे योग कहते हैं या याद कहते हैं, तपस्या कहते हैं, किंतु जब हम 4,000 भाई बहने इकट्ठे मिलके, जैसे एक कोला जलता है तो उससे आग नहीं बनती है, बनती है आग नहीं बनती है। उसके ऊपर कोई ईंट रखे तो ईंट पकती नहीं है, सोना डाले तो सोना पिघलता नहीं है। किंतु जब 4,000 भाई बहने, बहुत सारे कोयले इकट्ठे या बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी होकर जब जलती हैं, तो क्या होता है, वो बहुत सारी लकड़ियों के बीच में जब ईंटें भी पक जाती हैं, और क्या होता है, सोना भी पिघल जाता है, सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो 4,000 लोगों के वाइब्रेशन, जब आप 4,000 बैठ के इंटेंस योग मेडिटेशन करेंगे, इंटेंस योग भट्टी करेंगे, गहराई से जब बाबा के, एक बाबा दूसरा ना कोई, इस याद में टिक जाएंगे, एक ही संकल्प होगा परिवर्तन, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, जब ऐसी हमारी एक लगन होगी तो हम सब क्या बन जाएंगे, ब्रह्मा बाप समान बन जाएंगे। हम विश्व के सामने एक, हम सभी आत्माएं आधार मूर्त तो हैं, सारे विश्व की आत्माओं के आधार मूर्त हैं, उद्धार मूर्त हैं, उदाहरण मूर्त हैं। तो हम सबको अगले 4 दिन या 3 दिन कहें, यहां 3 दिन में ऐसी पावरफुल योग अग्नि जागृत करनी है, ऐसी ज्वालामुखी शक्तिशाली योग अग्नि जागृत करनी है जिसमें अपने 63 जन्मों के पाप कर्म भस्म हो जाए और अंदर एक छाप लग जाए, मधुबन के घर की छाप लग जाए, एक स्टैंप लग जाए आपके अंदर के, मुझे वो दृढ़ता अंदर से आ जाए कि मुझे अब परिवर्तन होना ही है, ना मुझे खाली परिवर्तन होना है बल्कि सारे विश्व को परिवर्तन करना ही है। और उसका आधार क्या होगा? मेरा अपना परिवर्तन। पर इसमें जब हम ये 4000 भाई बहने मिलके एक ही संगठन में, एक ही संकल्प में बैठेंगे तो जरूर ये कार्य वंडरफुल तरह से पूरा हो जाएगा। तो सभी तैयार हैं इसके लिए? यस, जो तैयार है वो हाथ उठाओ। इसलिए तो आज सभी आए हैं ना, सभी इसलिए तो आए ना, इसलिए है ना, इतने दूर से आप आए हैं, अपना टाइम निकाल के आए हैं, समय निकाल करके आप यहां पहुंचे हैं। तो अभी हमको तैयार हो जाना है। तो हम देखें कि हमारा जो ब्रह्मा बाप समान बनने की धारणाएं क्या है। हम सबका, हमारा लक्ष्य सभी ब्राह्मणों का क्या है? हम सभी ब्राह्मणों का लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना। तो हम देखिए, जीवन में ब्रह्मा बाप ने क्या किया कि वो फरिश्ता बन गए, वो भी हमारे तरह से प्रवृत्ति में थे, जिम्मेवारियां थी। इतनी जिम्मेवारी तो किसकी भी नहीं थी, 380 बच्चों को संभालना, वो भी एक घर के नहीं, एक खून के नहीं, एक परिवार के नहीं, भिन्न भिन्न परिवारों से आए हुए, उन बच्चों को पालना देना, हर एक बच्चे को वो बेहद की अनुभूति कराना, बेहद का प्यार देना और उनको भी इस लायक बना देना कि आज तक उन्हीं के जो ट्रेंड किए हुए बच्चे हैं बाबा के, चाहे पहली जनरेशन दादियों की, दूसरी जनरेशन बड़ी दीदियों की, बड़े भाइयों की, आज भी यज्ञ के वो आधार स्तंभ है, यज्ञ को दिशा दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, यज्ञ को चला रहे हैं, सुचारू रूप से चला रहे हैं। तो हम भी ऐसे बने ब्रह्मा बाप समान, ऐसे हम कैसे बन जाएं? देखें, अगर ब्रह्मा बाप के जीवन को देखें कि ब्रह्मा बाप ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा ने अपनी सूरत में, अपनी मूरत में, अपने मस्तक में, अपने नैनों में, अपने मुख में किसको समाया? शिव बाबा को समा दिया। इसलिए सबने शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के चेहरे से क्या देखा? क्या देखा? ब्रह्मा बाबा को देखा या बाप को देखा? शिव बाबा को देखा। नहीं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? सबके सब ब्रह्मा बाबा नहीं कहते, बाप दादा कहते हैं। जब भी हम बाबा के मन में जाते क्या कहते हैं? बाप दादा कहते हैं। तो ऐसे हमारा चेहरा बन जाए, हमारा सूरत, हमारी सीरत, हमारा मस्तक, हमारा नैन, हमारे मुख ऐसा बन जाए। ब्रह्मा बाबा ने एक एग्जाम्पल बने। ब्रह्मा बाबा की मुरली में देखें तो ब्रह्मा बाबा ने हमेशा, देखो मुरली में देखो, कभी बाबा ने मैं शब्द यूज किया? मैं शब्द यूज किया? मेरा शब्द यूज किया? कभी नहीं। बाबा बाबा बाबा। और प्रैक्टिकल में बाबा ने क्या किया? शिव बाबा को ही, मतलब जैसे थोड़ी सी बात भी होती थी बाबा के सामने, कोई बच्चा बीमार, कोई बच्ची बीमार होती, बच्चा बीमार होता, कोई समस्या आती छोटी सी भी, तो बाबा तुरंत संदेशी को ऊपर भेजते। चाहे एक बार कहते हैं ना, बाबा फागी में सब बच्चों के लिए ऊपर गए थे पहाड़ पर, फागी आ गई बहुत जोर से और नजर कुछ भी नहीं आ रहा, तो बाबा ने वहीं संदेशी को ऊपर भेजा। जब बाबा से पूछो कि हम कैसे क्या करें, तो बाबा ने फिर डायरेक्शन, शिव बाबा ने उनको डायरेक्शन रास्ता दिखाया। हर छोटी सी बात के लिए बाबा संदेश को, हालांकि बाबा अनुभव से बता सकते थे ऐसे कर लो, किंतु फिर भी बाबा हम बच्चों को सिखाने के लिए बार 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 संदेश को भेजते, थोड़ी थोड़ी देर में ही संदेश को भेजते। जब बाबा से पूछ के आओ बाबा की क्या डायरेक्शन है, बाबा की क्या श्रीमत है। तो हमें, हमारे सामने अभी कल का ही आपको याद होगा अव्यक्त इशारा कि ब्रह्मा बाबा की जीवन कैसी है, एक्यूरेट कंप्यूटर है। जब भी कोई हमारे सामने समस्या आए तो उस जीवन, जैसे हम आजकल क्या करते हैं, मोबाइल में जाते हैं, कंप्यूटर गूगल में जाते हैं ना, कोई भी चीज लिखते हैं उसका आंसर आ जाता है। किंतु हमारे सामने ब्रह्मा बाबा का जीवन ऐसा है, अगर हमारे सामने कोई भी बात आती है तो हम ब्रह्मा बाबा की, ब्रह्मा बाबा के जीवन रूपी कंप्यूटर को देख लें, उसमें कोई भी हमें समस्या आ ही नहीं सकती। कैसी भी चारों तरफ की हलचल हो, परेशानी हो, अपने शरीर में कर्म भोग हो, बाहर घर में परिस्थितियां हो, कार्य स्थान पर परिस्थितियां हो, वातावरण की परिस्थिति हो, प्रकृति की परिस्थितियां हो, प्रकृति की हलचल हो, कैसा भी कुछ हो रहा हो, किंतु हमें तुरंत ब्रह्मा बाबा को अगर हम देखते हैं तो हमारे आंसर हो जाते हैं। अगर हम किसी और देहधारी को देखते हैं, किसी और से पूछते हैं, तो मन में अनेक अनेक तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या क्यों कैसे आ जाते हैं। बाबा ने कर कहा ना, क्या क्यों क्वेश्चन, क्या क्यों का क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन टेढ़ा बाका है ना, और बिंदी क्या है, एक रस है, जिस तरफ से देखो वहां से एक रस है। तो प्रसन्नचित होने का साधन क्या है, बिंदी लगाओ, बिंदी बन के बिंदी बाप से कंबाइंड हो जाओ और ब्रह्मा बाबा को देखते जाओ। बाबा कहता है अगर हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है तो सबसे पहली बात हमें क्या करनी है, मस्तक में शिव बाबा को समाओ, मस्तक में शिव बाबा को समाओ, और नैनों में किसको समाओ, ब्रह्मा बाबा को समाओ। अर्थात ब्रह्मचारी निराकारी आत्मा बन के, अशरीरी आत्मा बन के परम धाम में अशरीरी बाप से कंबाइंड हो जाओ, और नैनों में ब्रह्मा बाबा, अपने नैनों के सामने ब्रह्मा बाबा का जीवन रखो, कंप्यूटर रखो कि ब्रह्मा बाबा के जीवन को फॉलो करते जाओ, क्योंकि वही एक आत्मा है जिसने बाबा की हर श्रीमत को 100% आज्ञाकारी, वफादारी, ईमानदारी और फरमानबरदारी से कुछ उसको श्रीमत को अपने जीवन में लाया, आज्ञाकारी सपूत बच्चा बना, और वही बच्चा है जिसने अपने दिला, अपने दिल में शिव बाबा को बसाया, दिलाराम और बाबा के दिल में जाके, दिल तख्त पे जाके बैठ गया, शरीर शरीर को छोड़ के अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, फरिश्ता रूप के साथ, लाइट रूप के साथ, आत्मा सूक्ष्म शरीर अर्थात संपूर्ण पावन सतोपदान बुद्धि, मन और संस्कार रूपी लाइट के सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा के दिल तख्त पे जाके बैठ गए, और शिव बाबा उनके दिल तख्त में आके बैठ गए, तो ये बन गए बाप दादा, और ये हो गया सूक्ष्म वतन। तो ऐसा बाबा जो पिछले 53 साल से निस्वार्थ भाव से दिन रात श्वास, बाबा ने अपने जीवन में शिव बाबा को श्वासो श्वास हर सेकंड हर संकल्प में समाया, तो हमें भी अगर ब्रह्मा बाप समान बनना है तो हमको भी क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय अशरीरी इस देह और देह की दुनिया से मन बुद्धि को समेट के अशरीरी आत्मा बन के परम धाम घर में अशरीर बाप से कंबाइंड रहना पड़ेगा, और फिर ब्रह्मा बाबा को साकारी जीवन में ब्रह्मा बाबा को अपने नैनों के सामने रखना पड़ेगा, ब्रह्मा बाबा को एग्जैक्टली फॉलो करना पड़ेगा। संकल्प करने से भी पहले देखो ब्रह्मा बाबा ने क्या संकल्प किया, ब्रह्मा बाबा ने क्या संकल्प, उसको देखते हुए हमें संकल्प करना है। ब्रह्मा बाबा ने ऐसी परिस्थिति में क्या संकल्प किया, क्या सोचा, मुझे भी वही सोचना है। ब्रह्मा बाबा ने क्या देखा, कैसे क्या पढ़ते थे ब्रह्मा बाबा, क्या सुनते थे, क्या बोलते थे, क्या खाते थे, कैसे बाबा सैर करते थे, कैसे लोग बाबा संबंध संपर्क में आते थे, कैसे बाबा परिवार को चलाते थे, कैसे बाबा का व्यवहार था बच्चों से, युवाओं से, बूढ़ों से, कैसे बाबा व्यवहार करते थे। प्रैक्टिकल हमारे जीवन ऐसी हो, हर चीज टैली करें पहले, क्योंकि क्या फायदा होगा, जब हम निराकारी आत्मा बन के निराकारी बाप से कंबाइंड रहेंगे तो हमारी थॉट ट्रैफिक स्लो हो जाएगी, हमारी थॉट स्पीड बहुत फास्ट रहती है, और हमको अगर ब्रह्मा बाप समान बनना है हमको अगर फरिश्ता बनना है तो हमको अपनी थॉट ट्रैफिक को स्लो करना पड़ेगा, क्योंकि दो हमको बातें करनी पड़ेंगी, एक तो ब्रेक लगाने की पावर चाहिए, ब्रेक लगाने की शक्ति चाहिए, दूसरा हमको मोड़ने की शक्ति चाहिए। हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जहां हमें तुरंत ब्रेक लगाना होता है, ताकि व्यर्थ संकल्प ना चले, नेगेटिव कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए, ऐसा नुकसान ना हो जाए जो बहुत हमें काफी पीछे ले जाए, सारा पुरुषार्थ हमारा गायब कर दे। तो ब्रेक लगाने की शक्ति, ब्रेक अगर तेज गाड़ी में लगाएंगे तो क्या होगा, मान लीजिए 100 की स्पीड में जा रहे हैं और ब्रेक लगा दो, क्या होगा, गाड़ी पलट जाएगी ना। सेम वे अगर हम अचानक, हमारी स्पीड बहुत फास्ट है, विचार बहुत तेजी से चल रहे हैं, नेगेटिव और व्यर्थ विचारों की स्पीड बहुत फास्ट होती है, जब भी देह भान, देह अभिमान, देह के संबंध संपर्क का भान, देह अभिमान के पदार्थों का भान और देह भान के स्वभाव संस्कार के अर्थात विकारों के वश कोई भी सूक्ष्म संकल्प चलता है, या कुछ हम देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, तो विचारों की स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। हमें इन सबसे मन बुद्धि को हटा लेना है, देह और देह की दुनिया से मन बुद्धि को समेट के अशरीरी आत्मा बन के अशरीरी भाव से कंबाइन होना, और तब हमारी संकल्पों की स्पीड अपने आप स्लो हो जाएगी, अर्थात हमारे संकल्पों की स्पीड जो 31, 32, 33, 34, 35 या कहें 33, 34, 35 रहती है एक मिनट में, वो हमें उसको 1, 2, 3 पे लाना है। उसका एक ही तरीका है, अशरीरी बन के अशरीरी भाव से कंबाइन होना, और तब संकल्पों की स्पीड इतनी स्लो हो जाती है, तब हम ब्रह्मा बाबा के जीवन को प्रैक्टिकली फॉलो कर सकते हैं। सोचने से पहले भी सोचना है, बोलने से पहले भी बोलना है, सोचना है, देखने से पहले भी सोचना, क्या करना है, सोचना है, टैली करना है बाबा से। तो आज हम इन बातों को, कुछ ऐसी बातें हम देखेंगे कि हम कैसे ब्रह्मा बाबा समान बने, ब्रह्मा बाबा की क्या धारणाएं थी। अगर हम इस, मैं लगभग 9 बातें आपको बताऊंगा, 9 बातें अगर हमारे जीवन में आ जाए तो फिर हम ब्रह्मा बाप समान बन सकते हैं। पहली जो बात है, सबसे पहली बात है अंतर्मुखता। हम सभी को जब हम मनुष्य थे तो हम सबकी आदत बाहर देखने की आदत पड़ी हुई है, चाहे बाहर बाहर के बारे में सोचना, बाहर के बारे में बाहर को देखना, बाहर की चीजें पढ़ना, बाहर की बातें सुनना, बाहर की बारे में बोलना, बाहर की चीजों का टेस्ट करना। अंतर्मुखता का अर्थ क्या है? अंतर्मुखता का अर्थ है मुख पर, है ना, मुख, ये जो हमारा मुख है इस पर सब कर्म इंद्रिय है ना, देखो मस्तक है, यहां पे सोचने की शक्ति आत्मा की स्थिति गई है, बुद्धि मन भी, बुद्धि यहां है, सम्मान सारे शरीर में फैला हुआ है, तो ये जो सोचने की शक्ति यहां पर है, सुनने की शक्ति यहां पर है, देखने की शक्ति यहां पर है, सुनने की शक्ति यहां है, और टेस्ट करने की शक्ति भी है, बोलने की शक्ति भी है। तो ये पांचों जो हमारी मुख्य कर्मेंद्रियां हैं वो मुख पर स्थित है। ये पांचों की पांचों चीजें बाहर की सोचती हैं, बाहर की देखती हैं, बाहर की सुनते हैं, बाहर का सुनते हैं। अब इसको हमें क्या करना, अंदर ले जाना है। और सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है, जो हमारी जेब में है, क्या है जो हमें बाहर ले जाता है बार बार, वो क्या चीज है, मोबाइल, है ना। जब हार्ट के प्रोग्राम में जब लोग दिल वाले आते हैं, उनको दिल वाले कहते हैं, हार्ट के प्रोग्राम में जो पेशेंट्स आते हैं, उनका हम आते ही मोबाइल जमा करा लेते हैं, दिल वाले भाई का भी, और या दिल वाले जो पेशेंट है, मान लो बहन है या भाई है, उनका भी मोबाइल, उनके वाइफ या हस्बैंड का भी मोबाइल जमा करा लेते हैं, और सातवें दिन ही वापस देते हैं जाने वाले दिन। तो आप क्या करोगे, सचमुच अगर आप भट्टी करना चाहते हैं तो अगले 3 दिन के लिए, मतलब 2, 3, 4 तारीख की शाम तक के लिए आप अपने मोबाइल को खुद ही स्विच ऑफ करके अंदर रख दो, अलमारी में रख दो, अपने साथ लेके मत आओ। सचमुच में आप भट्टी का, जिसे कहते ज्वालामुखी शक्तिशाली योग अग्नि, एक ही संकल्प में स्थित होकर पावरफुल योग अग्नि जागृत हो जाए, जैसे सारे विश्व में एक ऐसा प्रकंपन फैल जाए, वाइब्रेशंस फैल जाए, पावरफुल वाइब्रेशंस फैल जाए, और अभी तक जो फाइनल जैसे कहते हैं विनाश ज्वाला कहां से निकलेगी, इसी योग कुंड से निकलेगी। ऐसी ज्वाला प्रज्वलित हो जाए परिवर्तन की, और सबके अंदर जो भी हमारे बाकी ब्राह्मण परिवार है, कुछ आत्माएं जो स्लो हो गई किसी कारणवश में, प्रत्यय कारण, रोग कर्म भोग के कारण, उनके अंदर भी योग अग्नि जागृत हो जाए। सभी करने को तैयार है? जैसा कर सकते हैं हाथ उठाओ। पक्का? कुछ लोग नहीं हाथ उठा रहे। जिस काम के लिए आए वो करना तो पड़ेगा ना, अब करो या कब कल करो, करना तो पड़ेगा। और इससे अच्छा मौका क्या है, जुलाई अगस्त मास में मधुबन में भट्टियां होती है, योग भट्टियां होती है, उधर टीचर बहनों की भट्टी, इधर आपकी भट्टी चल रही है। ऐसा बढ़िया इसमें ओकेजन है कि हम सब मिलकर ऐसी पावरफुल योग भट्टी करें कि जो ब्रह्मा बाबा की धारणा थी पहली, जो आज का वरदान है, ब्रह्मा बाबा 1928 से रोज रात को अपनी कचहरी लगाते थे, अपनी दरबार लगाते थे कर्मेंद्रियों की, मन बुद्धि संस्कार एक तरफ पांचों कर्मेंद्रियां और शरीर के आठों अंग, और बाबा एक एक से पूछते थे कि तू अंतर्मुखी आत्मा ये कर सकती है, जो बाहर देखने वाली आत्मा कैसे कर सकती है, तो मुझे क्या सोचना है, अंदर जाके तभी हम सोच पाएंगे। आज एक बार अपने घर में फोन कर दीजिए, आप अगर बिजनेस मैन है तो बिजनेस के लिए फोन कर दीजिए कि मैं 3 दिन के लिए मैं ऐसी जगह पर हूं जहां पर इंटरनेट काम नहीं करता है, वहां इस तरह के वो नहीं, क्या बोलते हैं, टावर नहीं होता ढंग से, तो 3 दिन के बाद मैं आपसे बात करूंगा, 4 तारीख की रात को आपसे बात करेंगे। जब तक आप मेरे बेटे से बात करो या घर में किसी से भी बात करो, या बाद में 3 दिन के लिए पेंडिंग छोड़ दो सारे काम, 3 दिन के बाद बात करेंगे। करेंगे ऐसे? यस यस और नो? पक्का? तो 3 दिन तक उस स्विच ऑफ करके रख दो, और फिर देखना कितना जबरदस्त इफेक्ट आएगा आपके। पूरा ऐसा इफेक्ट कभी आज तक हमने महसूस नहीं किया हुआ, एकदम इंटेंस मेडिटेशन हो जाएगा, ज्वालामुखी शक्तिशाली भट्टी बन जाएगी, एकदम ऐसी ज्वाला निकलेगी जिसमें जो आत्मा में जितनी भी कमजोरी होगी ना सारी खत्म हो जाएगी। कच्ची आत्मा, कच्चा जो कच्चापन होगा पक जाएगी, ईटें एकदम परिवर्तन हो जाएगी। सारे दिन में एक भी फोन करते हैं ना, एक का भी फोन आता है, सारा एक विचार, सिर्फ एक विचार सारे दिन की भट्टी का असर खत्म कर देता है, वो ज्वाला को तेज नहीं होने देगा। एक विचार भी चलता है ना तो सारा खत्म, सारा दिन एक ही विचार, दिन रात 3 दिन एक ही विचार चले, बस बाबा मुझे बाप समान बनना ही है, मुझे बाप समान बनना है। 53 साल से बाबा हमारी इंतजार कर रहा है, आप सोच सकते हैं कोई 53 साल तक आपने इंतजार करे, सूक्ष्म वतन बाबा तो संपूर्ण हो गया, बाबा तो दाता विधाता मरदाता वरदाता बन करके हम बच्चों की दिन रात पालना कर रहा है, किसके लिए, हमारी इंतजार कर रहा है कि हमारे बच्चे संपन्न और संपूर्ण बने तो घर चले। नहीं तो हमें 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 नहीं आता, फीलिंग नहीं आती कि हमारा बाबा इतने दिन से बैठा है, कितने सालों से बैठा है, कितने एक दो साल की इंतजार अलग होती है, 5-10 साल की भी अलग होती है, 50 साल और उसके ऊपर भी 53 साल है ना, कब तक। साकार पार्ट पूरा हुआ, अव्यक्त पार्ट पूरा हुआ, अभी और क्या बाकी है, वो पूरा होना क्या बाकी है बताओ। करेंगे सभी तो अपने अंदर, तब अंदर की सोच चलेगी, मैं तब ये, अभी तो बाहर की सोच चलती ना, ये हम हमारे वहां पर, हम यहां तो गए वहां पे क्या हो रहा हो, तब अंदर की सोच चलेगी, अंदर जाएंगे कि मुझ आत्मा के बारे में सोचेंगे, अंदर आत्मा के बारे में सोचेंगे। सोचना क्या है, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, दिन रात ये लगन लगे, ये लगन की अग्नि जागृत हो जाए, ऐसी लगन लगे कि बस मैं कौन हूं हर समय, ये हम ऐसे अंदर देखते रहे, उस आत्मा को देखते रहे, आत्मा को अंदर सोचते रहे, आत्मा के बारे में, आत्मा कैसी है, जब सतो प्रधान आत्मा बने कैसी होगी, कैसे मेरी आत्मा की अभी स्टेज क्या है? तमो है, रजो है, सत्व है, सत्व प्रधान है, तरसे जन्मों के पापकर्म भस्म, कितनी जंग का उसके ऊपर बाकी। मैं आत्मा अशरीर, उस परमात्मा कैसा है, मेरा बाप कैसा है, उससे मेरे एक संबंध की गहराई से अनुभूति करना, सच्चे दिल से उसको महसूस करें, आत्मा को महसूस करें, परमात्मा को महसूस करें, एक एक संबंध, नौ मुख्य संबंधों को महसूस करें, ये अंदर की दुनिया को महसूस करें। जब सच्चे दिल से महसूस करेंगे तो आपको अपने बाबा के साथ एक एक संबंध की अनुभूति होगी, महसूसता आएगी तो अनुभूति होगी। बिना सच्चे दिल की महसूसता के अनुभव नहीं होता है, और बिना अनुभव के प्राप्ति नहीं होती है, और बिना प्राप्ति के तृप्ति नहीं होती है, और बिना तृप्ति के हमारा पुराना स्वभाव संस्कार परिवर्तन नहीं होता है, राइट? तो ये फॉर्मूला है। पहले सत्य को समझ लो, ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, उसको गहराई से समझो, फिर सारा दिन उसका मनन चलता रहे, मनन चिंतन मंथन सिमरण चलता रहे। कहां से चलेगा? यहां से चलेगा ना, अंदर से चलेगा ना। तो मनन चिंतन सुमरण कौन करेगा? मुझे आत्मा को अंदर जाके, मैं अंतर्मुखी होंगे तभी तो करूंगा। अगर मेरा ध्यान किसी दुनिया में रहेगा तो मैं कैसे करूंगा, कैसे करूंगी? तो यह टेंशन तभी अंदर जाएगा कि सारा दिन जैसे आज की मुरली चली बाबा की, क्या कहा बाबा ने, बाबा की आवाज कान में गूंज रही है, मीठे मीठे बच्चे, बाबा तुमको मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, तुम बाप और वर्षे को याद करो तो तुम्हें राजधानी का तिलक मिल जाएगा। गूंज रही है सुबह से बात, कितनी बार गूंजी, सारा दिन मन में बजती रहे मुरली, उसका मनन, उसको मन मन मने 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 रिवाइज करो, चिंतन, बाबा मुझे तो ऐसा बनना ही है, मुझे तो राजधानी में आना ही है, मुझे आपके साथ ही आना है, हम साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, वापिस राजधानी में साथ आएंगे। पहली राजधानी में आना है, दूसरी राजधानी में आना है, पहली में आना है, दूसरी में आना है, श्री कृष्ण के साथ आना है कि सेकंड वाली में आना है, एक जन्म बाद में आना है, बोलो, एक जन्म बाद में कि पहली में? जो पहली राजधानी में आना चाहते हाथ उठाओ, सभी, दूसरी में कुछ नहीं, पहली में सब आएंगे। तो फिर क्या करना पड़ेगा? साथ है, साथ है का मतलब क्या है? अगर हमारी चार मर्यादाएं और चार धारणाएं हैं, चार नियम पक्का फॉलो करते हैं तो साथ है, साथ नहीं है। कौन सी है हमारे नियम है, हमारी धारणाएं कौन सी है, मर्यादाएं कौन सी है? पवित्रता, जो आज का हमारा जो एफेक्ट इशारा शुरू हुआ ना, पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता ही मानता है उस, हमारे जो ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है, पवित्रता है। पवित्रता है तो ब्राह्मण जीवन है, अगर पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं है। तो पवित्रता पहली मर्यादा, ये पहला परहेज हमारी, परहेज कैसा, स्थूल पवित्रता हमारे अंदर ब्रह्मचर्य आ गया, किंतु सूक्ष्म पवित्रता क्या है, किसी भी देह अपनी देह से भी नहीं, और किसी और देहधारी से भी नहीं, सूक्ष्म में भी लगाव ना हो, सूक्ष्म में भी झुकाव ना हो उसकी तरफ हो, किसी भी देहधारी के प्रभाव में ना आए, और किसी भी देहधारी से टकराव ना हो, यह है सूक्ष्म पवित्रता। लगाव, झुकाव, प्रभाव और टकराव, जब इन चारों से मुक्त होंगे तो क्या होगा, तब हमारा अटेंशन उस परमात्मा से जुड़ेगा। किसी भी बात में क्या क्यों कैसे ना हो, किसी भी बात में क्या, परमात्मा की डायरेक्शन में सब कुछ चल रहा है, हर आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है, मैं आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही हूं, किसी बात में जरा भी हम क्या क्यों कैसे करना, माना परमात्मा की डायरेक्शन पे क्वेश्चन उठाना, क्या परमात्मा गलत डायरेक्शन देगा? परमात्मा इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा को इसके इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार उसने अभी तक 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दी है, और अभी भी दे रहा है और भविष्य में भी देता रहेगा। तो हम क्या क्यों कैसे करने के अधिकारी हैं क्या, कह सकते हैं? इससे वैध संकल्प उत्पन्न होते हैं, और वैध संकल्प भी अपवित्रता है। किसी भी विकार का अंश होना भी अपवित्रता है। आपने काम विकार पर जीत प्राप्त कर ली, ठीक है, किंतु क्या क्रोध अभी भी करते हो? क्रोध करना भी अपवित्रता है, लोभ करना भी अपवित्रता है, किसी से मोह होना भी अपवित्रता है, जरा सा अहंकार होना भी अपवित्रता है। अपने गुणों और विशेषताओं का अहंकार अभिमान भी आ गया तो अपवित्रता है। और फिर ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी, निरंतर अगर हम बाबा से ब्रह्मचारी अर्थात निरंतर ऐश्वर्य बन के परमधाम घर में श्री बाप से कंबाइंड रहे, और ब्रह्माचारी ब्रह्मा बाबा को फॉलो करें जो आज का विषय है, ये चार प्रकार की पवित्रता। और उसमें भी सार रूप में क्या कहें, अपने सत्य स्वरूप में स्थित होके। हमारा सत्य स्वरूप कौन सा है? अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप, सदा बुद्धि में इमर्ज रखें, स्मृति में इमर्ज रखें, और उसको इमर्ज रखते हुए, और सामने वाली हमारी हमारे घर में या बाहर कोई भी आत्मा है, हमारे लौकिक घर में या अलौकिक परिवार में सेंटर पर या दुनिया में कोई भी आत्मा से मित्र जुड़ते हैं, उसके भी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि सतो प्रधान स्वरूप, भले वो सत्युग में नहीं आए, त्रेता में नहीं आए, द्वापर में, जब भी धरती पर आए द्वापर में, तब भी सतो प्रधान स्वरूप में तो आएगी ना, उसके सतो प्रधान स्वरूप को इमर्ज करके हम उससे व्यवहार करें, सत्य स्वरूप सत्य की समझ के साथ व्यवहार करें। सत्य की समझ, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियों से भरपूर व्यवहार करें, इसको बोलते संपूर्ण पवित्रता। जितनी ये पवित्रता की डिग्री बढ़ेगी ना, उतना हमारा अमृत वाला पावरफुल होगा, उतना हमारे मुरली अंदर जाएगी, उतना हमारे अंदर क्या होगा, उतना सारा दिन अटेंशन रहेगा, बाबा ने आज क्या कहा, दुनिया की बातों पे अटेंशन नहीं जाएगा। ब्रह्मा बाबा का जीवन ऐसा ही था, जब से ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा की पधरावणी हुई, उस दिन से दादी बताती, निर्मशांता दादी बताती थी, दादी की दूसरी डॉटर जो थी ना, पुत्री थी पुट्टू दादी, हमारे साथ 2 साल 8 महीने रही थी हमारे पास हॉस्पिटल में, रोज हम उनसे मिलते, बहुत घंटे, कई बार तो हम घंटे घंटे दो दो घंटे भी उनके साथ शाम को बैठते थे, तो सारी ब्रह्मा बाबा के जीवन की बातें बताते थे। तो कैसे बाबा, जिस दिन बाबा आए हैं शिव बाबा की पधरावणी, उस दिन के बाद बाबा को किसी ने भी देख करके ये नहीं कहा कि ये मेरे पिताजी हैं, या उनके युगल ने ये नहीं कहा मेरा युगल है, फीलिंग ही नहीं आई ये तो बाबा है, बाबा सबने कहा बाबा, युगल ने भी बाबा कहा, बेटे ने भी बाबा कहा, और बच्चों ने भी बाबा कहा, सबने ही बाबा कहा, कोई भी संबंध था सबने ही बाबा, बाबा बदल गया, एकदम बदल गया। तो हमारी ऐसी स्थिति बनी है क्या? तो ये पवित्रता की कमी है, कहीं भी थोड़ा भी लगाव है, झुकाव, प्रवाहटर, वहां लीकेज है, जो ऊपर से करंट आई सारी चली गई, बह गई, हम वैसे के वैसे, मटके में 2-4 छेक हैं, छेक में सब पानी बह गया, मटका खाली के खाली, अभी भरा था, अभी देखो तो खाली, अभी अमृत वाला बहुत पावरफुल योग किया, अभी शाम को बहुत अच्छा योग किया, फिर थोड़ी देर देखो तो खाली, जहां जहां छेक है ना वो निकल गया सारा कुछ, जरा भी क्या क्यों कैसे ये भी लीकेज है, जरा भी क्रोध, किसको आंख भी दिखाते हो ना, ये भी लीकेज है, थोड़ा अपने नाम मान शान का अभिमान है, ये भी लीकेज है, थोड़ी कोई इच्छा है ना, ये भी लीकेज है, किसी के प्रति मोह है, बच्चे के प्रति, पोते के, पोत्री के प्रति, ये भी लीकेज है, सारी निकल जाएगी, राइट। तो ये चेक कर लो, पहली पहली धारणा ये है। दूसरी धारणा क्या है? अंतर्मुखता। अंतर्मुखता के बगैर धारणा नहीं आएगी। दूसरी, शुद्ध सात्विक भोजन। अगर हमारा शुद्ध सात्विक भोजन है, शुद्ध माना बाबा की याद में बनाओ, बाबा की याद में खाओ, और फल, सब्जी, सलाद, अंकुरित दलिया, रोटी, सब्जी, चावल, दूध, दही, ये भोजन सात गुणों को बढ़ाने वाला भोजन, सहज पच जाने वाला भोजन, वो समय पर खाओ, बाबा की याद में खाओ। रास्तिक भोजन, पराठा, पकोड़ा, समोसा, तली चीजें, ये सब रास्ते एक आलस पैदा करेगा। बैठोगे मुरली सुनने, योग करने नींद आएगी। तामसिक भोजन, अचार, गरम मसाले, लाल मिर्चें, लहसुन प्याज तुमने छोड़ दी, नॉन वेज छोड़ दिया, चाय कॉफी भी पीना, ठीक है, सर्दी हो गई है, जुकाम हो गया, पी लो। तो वैसे शौक में पीना चाय कॉफी नुकसान, कोल्ड ड्रिंक पीना ये उत्तेजना पैदा करते हैं अपने अंदर। चलो चाहोगे बाबा ऊपर जाए, उत्तेजना पैदा होगी, नशे उत्तेजित रहेंगी, योग लगेगा ही नहीं। तो शुद्ध सात्विक भोजन, बाबा के भोजन, बाबा के बच्चों का भोजन बहुत सात्विक होता है, ठंडा करने वाला, कर्मेंद्र को शीतल करने वाला होता है, सहज पचने वाला, गैस बनाने वाला नहीं, हल्का हल्का करने वाला, ऐसा भोजन करो। तो ये धारणा, सेकंड धारणा, शुद्ध अन्न, हमारा तन भी शुद्ध हो, मन भी शुद्ध हो, अन्न भी शुद्ध हो, और फिर संग भी शुद्ध हो, सत्संग, दो ही सत्य सत्य है संग, एक बाबा और एक मुरली, बाकी सब कुछ असत्य है। इसलिए बाबा और मुरली, सारा दिन मुरली, बाबा की मुरली ना, ये बाबा का लव लेटर है ना, लव लेटर कितनी बार पढ़ते दिन में, कितनी बार पढ़ते हैं, कितनी बार, चार बार, बस चार बार थोड़ी ना पढ़ते, लव लेटर सारा दिन पढ़ते रहते हैं, बुद्धि में घूमता ही रहता है, बाबा ने आज ये कहा, आज ये कहा, आज ये कहा, दुनिया की बातें याद ही नहीं आती, ये तो दिल के पास रखते हैं लव लेटर और छुपा के पढ़ते रहते सारा दिन, मौका लगा पढ़ा, एक लाइन पढ़ी मुस्कुराए, फिर छुपा लिया, फिर देखा मौका लगा फिर पढ़ा, फिर मुस्कुराए, है ना, सारा दिन बुद्धि में बाबा की बातें ही रहती हैं, बाबा ने क्या वरदान दिया, क्या स्लोगन दिया, तो सारा दिन अंदर बुद्धि में चलता ही रहे, बाबा और मुरली, बाबा और मुरली। बस बड़ी दादी ने एक बार मुझसे कहा था, गुप्ता जी आप बताओ असतन कौन बनेंगे, मैंने दादी बाबा, ब्रह्मा बाबा बनेंगे, मम्मा बनेंगी, और आप बनेंगे, और दादियां बनेंगी, पर कहते क्वालिफिकेशन क्या है, दादी ने कहा जिनके श्वासों श्वास दिल में बाबा और बाबा की मुरली रहती है ना, वो अष्टतन बनते हैं। एक सौ आठ की माला में कौन आते हैं, फिर दादी ने कहा विजय माला, वैजयंती माला में कौन आते हैं, मैं दादी आप ही बताओ, दादी कहती है जो दिन में कम से कम 100 बार जिनको बाबा और बाबा की मुरली याद आती, बाबा ने क्या कहा, वो 108 की माला में आते हैं। बनना है ऐसे, बनना है 108 की माला में आना, तो कितनी बार करनी पड़ेगी, बाबा कितनी बार याद आएगा, कितनी बार याद आएगा, 100 बार याद आएगा दिन में, मुरली 100 बार याद आएगी, मतलब 1 घंटे में 6 बार, हर 10 मिनट में बाबा, बाबा और बाबा की मुरली याद आनी चाहिए। सुना, बनना है नहीं बनना, राजयोगी है कि प्रजायोगी है, और 16108 आत्माएं ही बनेंगी सत्यु के अंत, त्रेता के अंत तक, राजा रानी, प्रिंस प्रिंसेस, तो वो कौन बनेंगे जो दिन में कम से कम 8 बार बाबा और बाबा की मुरली को, बाबा की मुरली जिनके अंदर बजती है, बाबा बजता है बाबा मना, बाबा की याद आती है 8 बार, और जिनको बाबा की मुरली, जिनको बाबा, बाबा ने क्या कहा, बाबा ने क्या कहा, बाबा जिन्होंने बाबा से सर्व संबंधों के अनुभव की अथॉरिटी बने हों, जिन्होंने 8ों शक्तियों के अनुभव की अथॉरिटी बन गए हों, अशक्तियों के अनुभव की अथॉरिटी बने, ऐसे बच्चे ही 108 की माला में आते हैं। तो ये आपका तो पक्का पवित्रता की गहराई समझ लें, शुद्ध सात्विक भोजन की गहराई समझ लें, और सत्संग की गहराई समझ लें। सुने थोड़ा, करें मनन चिंतन मंथन स्मरण खूब करें। हम क्या करते, बहुत सुनते रहते हैं, ये क्लास सुनी, वो क्लास सुनी, इतना सारा दिन सुनते रहेंगे, कभी गीत सुनते रहेंगे, मनन चिंतन कुछ करते नहीं, खाते रहते, पचाते ही नहीं, चबाते भी नहीं, पचाते भी नहीं, तो क्या होगा मुझे बताओ, टेस्ट किया और बस थूक दिया, टेस्ट किया थूक दिया, नहीं चबाओ, बिना चबाए पचता है कभी क्या, चबा के फिर उसको अंदर निगलो, फिर पेट में जाएगा, पेट में उसके स्टमक में एंजाइम्स और एसिड काम करेगा, फिर छोटी आंत में 3 घंटे पेट में 3 घंटे रहेगा, फिर छोटी आंत में जाएगा 3 घंटे, फिर उसको और फाइन ब्रेक करेंगे, फिर छोटी आंत के आखिरी हिस्से में एब्जॉर्ब होगा, फिर खून में जाएगा, फिर खून से लिवर में उसकी सफाई होगी, फिर जाके सारी बॉडी में जहां जहां आवश्यकता है, सेल्स की रिपेयर हो रही है, हमारे खून बन रहा है, हड्डियां बन रही है, लिवर बन रहा है, हार्ट की मसल्स बन रही है, हाथों की दीवारें बन रही है, वो सारी दिमाग की सेल्स बन रही है, आंखों की सेल्स बन रही है, सब जगह वो खाना काम आएगा। कब बनेगा? ऐसे ही हमारे अंदर हमारे मन के एक विचार, हमारी एक एक भावना, एक एक स्मृति, एक एक वृत्ति, एक एक दृष्टि, इससे पवित्र बनेगी, मुरली से बनेगी ना। तो इतना हमको धारण करना पड़ेगा, पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग और फिर दैवी गुणों की धारणा, चौथी धारणा। अंतर्मुखी होने के बाद ही हम इन पर ध्यान जाता नहीं है, तो हम कैसे रट लेते हैं पवित्रता, बस रट ली, प्रैक्टिकल लाइफ में पवित्रता नहीं। पवित्रता का मतलब कहीं ना कहीं लगाव चल रहा है, फोन पे बात चल रही है, जकाव है, प्रभाव है, टकराव, वही चल रहा है, ऐसा नहीं। किसी ने प्यार से कहा खा लो, कोई बात, लोग लाज के वश खा लिया, किसी के आगे खा लिया, नहीं, बाबा की याद में बनाओ, और सूक्ष्म अति सूक्ष्म, थोड़ा सा खाने का ना, ज्यादा थोड़ी ना खाने का, अपने घर में बनाओ, अपने साथ दो रोटी ले जाओ, सब्जी ले जाओ, खा लो एक कोने में बैठ के, पानी भी अपने साथ बोतल में ले जाओ, पी लो, वहां युक्ति बता दो कि हमने तो शाम को खाना खा लिया है, बस लगन लगाओ, है ना। लोक लाज के पीछे प्रभु ब्राह्मण कुल की लाज तो मत गवाओ ना, फिर कहते हमारा योग नहीं लगता, कैसे योग लगेगा। अब यहां पर आए तो यहां पे तो आपको ब्रह्मा भोजन मिल रहा है ना, सत्संग मिल रहा है, पवित्रता का वायुमंडल है, ठीक है, तो ये वायुमंडल वहां क्रिएट नहीं कर सकते इतना अच्छे से, तो यहां पर पावरफुल तपस्या कर लो। और दैवी गुणों की धारणा, चौथा ये है, अगर दैवी गुणों की धारणा क्यों, सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, सभ्यता, अंतर्मुखता, ये सबसे बड़ी धारणा है दैवी की, सबसे बड़ी दैवी गुण सत्यता, सत्यता से शुरू होता है, अपने सदा आत्मिक स्वरूप में रहना, अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवी देवता स्वरूप में स्थित होकर हर काम करना, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, संबंध संपर्क में, व्यवहार में आना, सत्य पवित्रता, अपने भी उस स्वरूप में, दूसरे के स्वरूप को इमर्ज करके व्यवहार करना, निर्भयता, बुद्धि रूपी आंख परमधाम में लगी रहे बाबा के पास, और मन रूपी आंख अपने लक्ष्य पे, सुखधाम में अपने श्री कृष्ण के स्वरूप पे लगी रहे, मुझे ये बनना है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, और सभ्यता, सिविलाइड में सबको आत्मा के रूप में देखना, तब अंतर्मुखता आती है, तब अंदर जाते हैं, इसका खूब अभ्यास करो, सत्यता, पवित्रता, निर्भयता और सभ्यता। जब भी निकलो भट्टी से, इधर भी बैठे हैं तो आवास में देखो, दूसरे सामने को, सामने वाला कौन बैठा, आत्मा, सामने वाला कौन बोल रहा है, आत्मा, उस आत्मिक स्वरूप को, अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप को और आदि देवी देवता स्वरूप को इमर्ज रखो, करेंगे सभी से व्यवहार को, तो ये अंतर्मुखता की गहराई, अंदर अंदर सोच, अंदर के अंदर से जर्नी है, और ड्रामा में अपने पार्ट को देखो, बाबा से के संबंध को अनुभव करेंगे और ड्रामा में अपने पार्ट को देखो, और फुल स्टॉप लगाओ, जो बीत गया उसको फुल स्टॉप लगाओ, और अभी अश्री बन के अश्री बाप से कंबाइंड रहो, और भविष्य के अपने फरिश्ता स्वरूप, देवता स्वरूप को देखो, महसूस करो, अंदर देखना माना महसूस करना, ये अंतर्मुखता अपने निर्धारण करो। दूसरी जो बात है, आंखों से क्या देखना, अंदर देखो, अंदर से अंदर देखो, आत्मा के देखो, आत्मा कितनी क्लीन एंड क्लियर बनी है, कितनी कैसे, कौन कौन से गुण आत्मा में आ गए हैं और कौन कौन से अवगुण बाकी हैं, कमी कमजोरी को भी देखो, परमात्मा से कितना स्ट्रांग कनेक्शन बना है, नाक से अपने गुणों को सूंघो, कौन कौन से गुण दैवी गुण आ गए हैं, अवगुण कौन कौन से बाकी हैं, कानों से आत्मा की सुनो, आत्मा क्या बोल रही है, दूसरों की सुनते हैं, आत्मा की सुनो, मुख से क्या करो, टेस्ट करो, गुणों का टेस्ट करो, तो सारा कुछ, और जब सारों से कंबाइंड होकर फिर बोलो, अंतर्मुखी होगी। अंतर्मुखता की परिभाषा जो बाबा ने मुरली में दी है वो है, देह और देह की दुनिया से एक सेकंड में डिटैच, मैं शरीरी आत्मा, ये है मैं अशरीरी आत्मा, अंतर्मुखी, अंदर गए और एकदम डिटैच हो जाओ देह और देह की दुनिया से, मैं अशरीरी आत्मा, परम धाम घर में श्री बाप से कमाए, इसे बोलते हैं अंतर्मुखता। अंतर्मुखता का सुख लो, उस पावर हाउस से कंबाइंड हो जाओ। दूसरा है बेहर की वैराग्य वृत्ति। जब अंतर्मुखी अंदर का सुख मिलेगा तो बेहर की वैराग्य वृत्ति अपने आप आ जाएगी, जो ब्रह्मा पापा ने प्रैक्टिकल में आई। और तीसरा है हमारी बुद्धि और मन कहां फैला रहता है, अपने तन में सबसे ज्यादा लगा रहता है, मन में, मन में जो हमने रिकॉर्ड हो रखा है, जो कुछ हमने अब तक किया है, धन में और संबंधों में, चार चीजों में हमारा योग लगा रहता है हमेशा, अपने तन के साथ, अपने मन के साथ, धन के साथ और संबंधों के साथ। इन चारों को बाबा को समर्पण कर दो सच्ची दिल से। जब अंतर्मुखी बनेंगे, भेद की वैराग्य वृत्ति आएगी, तो फिर ये चारों चीज समर्पण हो सकती है। ब्रह्मा बाबा ने एकदम कर दिया। 1937 में साक्षात्कार हुआ बाबा को, बाबा के अंदर, ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा की पधरामणी हुई। निज ज्ञान निज आनंद स्वरूपम शिवम शिवम, पहली चीज आनंद थी, आनंद माना गोइंग बियॉन्ड, बंधन मुक्त स्थिति। बाबा ने कहा मैं कैसे बंधन मुक्त हूं, और ब्रह्मा बाबा ने भी एकदम बंधन मुक्त हो गया, अपना तन बाबा को दे दिया, मन भी बाबा को दे दिया, धन भी बाबा को दे दिया, अपना संबंध भी बाबा को समर्पण कर दिए। ऐसे ये तन अभी बाबा की अमानत है, अब अतीन्द्रिय अभ्यास करो, ये तन बाबा मेरा मेरा तन नहीं है, बाबा की अमानत समझ के यूज करो, इसके हिसाब से इसको सेवा, इसकी पालना करो। जब भी कुछ यूज करना है पहले बाबा से पूछ लो, बाबा ऐसे यूज करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं। मन में संकल्प भी बाबा की श्रीमत पे लाओ, वेरीफाई कर लो। धन, सबसे बड़ा धन ब्राह्मणों का समय है, संगम का समय है, एक एक सेकेंड एक एक संकल्प बाबा की श्रीमत पे चलाओ, श्वास बाबा की श्रीमत पे। और स्थूल धन भी बाबा से बिना पूछे खर्च मत करो, ये हमारा धन नहीं बाबा का धन है। और संबंध, सारे संबंध बाबा को समर्पण करो, आपका जो भी युगल है, बच्चे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बाबा को समर्पण करो, उनके लिए भी बाबा से पूछ के अब हम हर काम करें तो हमारा योग लगना शुरू हो जाएगा, हमारी निरंतर याद शुरू हो जाएगी, हर संबंध से बाबा की याद हमें आने लगेगी। और तब जब बाबा से सर्व संबंध की याद आने लगेगी तो अंदर क्या होगी, तब विस्तार को सार में, हमारी मन और बुद्धि को विस्तार को विस्तार सार में चले जाएंगे, और सार में जाएंगे तो आत्मा सूक्ष्म शरीर, हमारा मन जो है ना सूक्ष्म हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। हमारे दिव्य बुद्धि तो पहले ही बाबा से हमें गिफ्ट के रूप में मिली है, जन्म से ही हमें दिव्य बुद्धि गिफ्ट मिली है बाबा से, दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट, हमें दिव्य बुद्धि गिफ्ट एक लिफ्ट बन जाएगी, और ये मन हमारा सूक्ष्म हो जाएगा, सूक्ष्म माना पवित्र हो जाएगा। हमारे बुद्धि इंजन है, और दिव्य ये मन जो है हमारा सूक्ष्म शरीर, लाइट का शरीर बन जाएगा। और ये संस्कार जो चार बातें हैं, पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग और दैवी गुणों की धारणा, ये हमारी ड्रेस बन जाएगी। और फिर इसके साथ जब हम अमृत वेला, पावरफुल अमृत वेला, तब हमारा अमृत वेला पावरफुल होगा, मुरली अंदर रिकॉर्ड होगी, अंदर सारा दिन बजती रहेगी, सारा दिन उसका मनन चिंतन मंथन सिमरन होता रहेगा, अटेंशन रहेगा मुरली पर, दुनिया की बातें याद नहीं आएंगी, बाबा की बातें याद आएंगी। और सोने के बेड वेंटिलेशन, हमने प्रैक्टिकली देखा है पिछले 25 साल में, बाबा के हर दिल वाले बच्चे और मैं खुद सोने के पहले बाबा को लेटर लिखता हूं, पोता मिल देता हूं, सुबह से मीठे बाबा आज सुबह से आपने मुरली में कहा, मैंने इसे किया, मन में, शरीर में, परिवार में और सेवा में, चार फील्ड हर एक के पास होते हैं, चारों में कुछ भी ऊपर नीचे है, टेंशन है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लिखो बाबा को, बाबा मेरे से आज ये हो गया, बाबा मेरे मन में ऐसा चला, मेरे शरीर में ऐसा था, मेरे परिवार में ऐसा हुआ, मेरे सेवा में ऊपर नीचे ऐसा है, इसके बारे में बाबा को पूरा पूरा समाचार दो सच्चाई से सोने के पहले। और फिर याद का चार्ट, घंटे घंटे याद का चार्ट बना लो, अभी बना सकते हो, सुबह 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, हर कर्म करते बाबा से कोई ना कोई संबंध को यूज करते बाबा से, हर कर्म में बाबा को साथ रहो। तो एक घंटे में देखो 480 मिनट आपको एक दिन में पूरे मिले, 480 मिनट का योग करो, 8 घंटे का योग रोज करो, ऐसा प्रैक्टिकल इस 3 दिन भट्टी में करो, तो बहुत पावरफुल स्थिति बन जाएगी। करेंगे सभी? यस। तो क्या होगा आपके अंदर, क्या होगा जब विस्तार को साधने में शक्ति आएगी, तो फिर वहां बाबा से भिन्न भिन्न संबंधों की अनुभूति करो, और फिर वहां से भी मन बुद्धि को समेट के और फिर अशरीरी आत्मा बन के परमधाम घर में शरीर बाप से कंबाइंड हो जाओ, और फिर आपके जो कर्म भोग हैं, जो भी शरीर में कर्म भोग हैं, बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, सिर दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, घुटनों में दर्द, कुछ भी होता है, आप देखोगे आपका दर्द ही खत्म हो जाएगा। इतनी बैटरी चार्ज होगी, करंट इतनी आएगी, इतने एंडोर्फिन्स एन्केफलिन्स निकलेंगे और दर्द ही खत्म हो जाएगा। सहन करना सहज हो जाएगा, सूली कांटा बन जाएगी, कुछ भी परिस्थितियां आसपास की हम सब खत्म हो जाएंगी। ये अंदर अंदर जाके आप महसूस करना तो सहनशीलता आ जाएगी। सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति आ जाएगी, सहनशीलता आ जाएगी। और जब ऐसा होगा तो सहनशीलता आ जाएगी, ये सहनशीलता कि आप अधिकारी बन जाओगे। और जब ऐसा आएगा तो ऐसा फील होगा बाबा हर समय मेरे साथ है। अभी तो आप थ्योरिटिकली करते हो, प्रैक्टिकली बाबा लगेगा मेरे साथ है हमेशा। जब प्रैक्टिकली बाबा रहेगा तो बाबा के अंदर रूहानी फकूर आ जाएगा। रूहानी फकूर माना बाबा मेरे साथ है, कभी माँ के रूप में, कभी बाप के रूप में, कभी टीचर के रूप में, कभी सदगुरु के रूप में, कभी बड़े भाई के रूप में, कभी दोस्त के रूप में, कभी साजन के रूप में, कभी सज्जन के रूप में, कभी बच्चे के रूप में, सारा दिन फील होता रहेगा। और फिर जब बाबा साथ रहेगा तो बेफिक्र बादशाह बन जाओगे। फिर सातवां स्टेप कौन सा, सातवीं बात कौन सी होगी, त्याग। तब मैपन और मेरेपन का त्याग हो जाएगा। जब मैपन मेरेपन का त्याग हुआ तो फिर निराकारी अवस्था आ जाएगी, फिर चलते फिरते फील होगा मैं निराकारी आत्मा। पहले हम उसके बारे में जानना शुरू किया, किंतु बाद में निराकारी का फील होगा चलते फिरते। मैं देह में रहते साकार में निराकारी का महसूसता होगी, सामने वाले के साकार को देखते हुए भी निराकारी स्थिति का महसूस होगा, सामने वाले की भी निराकारी अवस्था महसूस होगी। तो जब ऐसे निराकारी अवस्था बनने लगेगी तो निराकारी बनके निराकारी बाप से कंबाइन होगे तो तपस्या शुरू हो जाएगी, ज्वालामुखी शक्तिशाली योग अग्नि जागृत होगी। ये महसूस करने की बातें हैं, थ्योरेटिकली बात करने की नहीं है, है ना। जब ऐसे ज्वालामुखी तपस्या होगी तो क्या होगा, देहभान खत्म होना शुरू हो जाएगा, तब फरिश्ता की स्थिति आनी शुरू हो जाएगी। और जब ऐसी फरिश्ता तो सर समय क्या होगा, आप देखना, दो दिन में देखना, एक दिन में देखना, तो ऐसा फील होगा हम सूक्ष्म वतन में है, बाप दादा की गोद में है, फरिश्ता स्थिति, सारे विश्व को सकाश जा रहा है अपने आप, लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति में आ जाएगी, फिर निरंकारी स्थिति आएगी। तो फिर जो है, फिर हमारे अंदर क्या स्थिति आएगी, जब ऐसी निरंकारी स्थिति तो नष्टो मोह स्मृति लब्धा की स्थिति आ जाएगी। तो प्रैक्टिकली आप इस चीज का प्रयोग करो और सारा दिन मुरली को, मुरली है ना बाबा की मुरली, आपके आप नोट करो, जब लिखते हो ना कागज पे नोट करो, सुबह मोबाइल तो बंद करके रख दो, कागज पे नोट कर जेब में रखो, उसको दिन में बार 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 वरदान स्लोगन मीठे बच्चे क्वेश्चन आंसर गीत बार बार बुद्धि में बजे, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, दिल रूपी दर्पण में अपने मन रूपी मुखड़ा देखते रहो, मेरे मन में क्या चल रहा है, बाबा की मुरली चल रही है कि कुछ और चल रहा है, चेक करो और चेंज करो, चेक करो और चेंज करो। तो ये नौ मुख्य धारणाएं कौन कौन सी, अंतर्मुखता, बेहद की वैराग्य वृत्ति, तन मन धन और संबंध का समर्पण, और फिर सहनशीलता, फिर बेफिक्र बादशाह, फिर कर्म योगी, फिर हर कर्म करते बाबा की याद रहेगी, और फिर स्थिति आएगी त्याग। त्याग में ना दे और दे के संबंध, मैपन और मेरेपन का त्याग हो जाएगा, फिर तपस्या शुरू, फिर निराकारी स्थिति आएगी, फिर तपस्या होगी, तपस्या से क्या हुआ, निर्विकारी का देवान भी खत्म हो जाएगा, फरिश्ता स्थिति महसूस होनी शुरू हो जाएगी, फिर बेहद की निस्वार्थ भाव की सेवा होगी, और फिर उससे आप निरंकारी बन जाएंगे, और फिर लास्ट में चलते फिरते जस नष्टो मोह स्मृति लब्धा, निरंतर आपको चलते फिरते ऐसी स्थिति बन जाएगी, चल यहां रहे हो पर परम धाम में बुद्धि रहेगी, सूक्ष्म वतन में बुद्धि रहेगी, यहां रहते भी शरीर में रहते सूक्ष्म वतन वासी और परम धाम निवासी की फीलिंग आएगी। साकार में आकारी और निराकारी स्थिति का अभ्यास होता है, पक्का साकारी और निराकारी स्थिति महसूस होती रहेगी। तो यही इसे कहेंगे परिवर्तन, और ये इसको साथ में लेके जा पाएंगे, और वहां जाकर के और भी सारे विश्व में वाइब्रेशन फैलाते रहेंगे। ओम शांति।
देखा।
मुझको।